इप्सिता नंदिनी की मॉम से बात कर रही थी कि तभी इप्सिता की मम्मी इप्सिता के पास आईं और उन्होंने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, इप्सिता बेटा, हम जानते हैं आप अभी भी हमसे नाराज हैं और आपने हमें माफ नहीं किया है, लेकिन हम सच में अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। सच बताएं तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा गलत होगा। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। इप्सिता उनकी बात चुपचाप सुन रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता के चेहरे की तरफ देखा। सभी लोग इप्सिता की तरफ देख रहे थे कि आखिर इप्सिता उनकी बात का क्या जवाब देगी। तभी नंदिनी इप्सिता के बगल में आकर बैठी और उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, ईशु, मम्मी जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है, तो अब मुझे लगता है तुम्हें भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। कब तक तुम उनसे इस तरह नाराज़ रहोगी? इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। तभी वो इप्सिता के पास आईं और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ इप्सिता, अपनी मम्मी को माफ़ कर दो, क्या तुम हमें एक दूसरा मौका नहीं दोगी? जैसे ही उन्होंने अपने हाथ जोड़े तो इप्सिता उठकर खड़ी हो गई और उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मम्मी, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको माफ़ कर दिया है। इप्सिता ने ये बात कही तो नंदिनी उसकी तरह देखकर मुस्कुराने लगी। इप्सिता की मम्मी उसे गले लगाने जा ही रही थी कि तभी इप्सिता चुपचाप वापस अभिमन्यु के बगल में बैठ गई। इप्सिता के पापा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और सब लोग इप्सिता और अभिमन्यु की खातिरदारी में लग गए। इप्सिता नंदिनी और नंदिनी की मम्मी से बातें करने में बिजी हो गई। उदय अभिमन्यु के साथ बातें कर रहा था। तभी सुहासिनी जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, काफ़ी देर हो गई है, हम सब एक साथ लंच कर लेते हैं। सुहासिनी जी के इतना बोलते ही नंदिनी उठकर खड़ी हो गई और उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, चलो इतने दिनों बाद हम सब एक साथ लंच करेंगे। नंदिनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उसे इतना खुश देखकर इप्सिता मुस्कुराने लगी और वो सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ राजवंश महल में नरेंद्र और पल्लवी अपने कमरे में थे। पल्लवी ने नरेंद्र के बगल में बैठते हुए कहा, अब तो ये अभिमन्यु राजा बन गया है, अब तो हमें नहीं लगता हम उसका कुछ भी बिगाड़ पाएंगे। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से अभिमन्यु के सामने इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र पल्लवी की बात चुपचाप सुन रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सिगरेट को पी रहा था। पल्लवी ने जब देखा कि वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो उसके बगल में बैठे हुए बोली, आप हमारी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? हम कुछ कह रहे हैं आपसे। नरेंद्र ने पल्लवी को घूरते हुए कहा, सब सुन रहे हैं हम, और आपको क्या लग रहा है पल्लवी? हमें इस बात की ज़रा भी टेंशन नहीं है, बल्कि हम आपसे ज़्यादा परेशान हैं और हमें नहीं समझ आ रहा कि हम अब करें तो करें क्या। कैसे हम अभिमन्यु को हरा पाएंगे? क्योंकि अब तो जब वो राजा सा बन गया है तो एक तरह से देखा जाए तो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अब उसके नाम हो गई है। हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगने वाला और हम ऐसे कैसे और कब तक उसके टुकड़ों पर पलते रहेंगे? बस बहुत हो गया, अब हमें कुछ ना कुछ बड़ा सोचना होगा और हम वही सोच रहे हैं कि हम अभिमन्यु को कैसे हराएं। पल्लवी ने नरेंद्र की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा, अभिमन्यु को हरा पाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी दुखती रख पर हाथ रखेंगे तो हमें लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र ने जैसे ही ये बात सुनी वो अपने हाथ में पड़ी हुई सिगरेट को अपने मुँह से हटाते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं आप? हमें साफ साफ बताइए पल्लवी। पल्लवी के चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, अभिमन्यु सबसे ज़्यादा इप्सिता से प्यार करने लगा है और हमें लगता है कि अगर इप्सिता को हम निशाना बनाते हैं तो हम अभिमन्यु से कुछ भी करवा लेंगे। जैसे ही पल्लवी ने ये बात कही तो नरेंद्र उसे घूरते हुए देखने लगा। तभी पल्लवी ने कहा, आपको हमें इस तरह से घूरने की ज़रूरत नहीं है, हम सच कह रहे हैं, आप खुद ही सोचिए, अगर इप्सिता की जान पर बात आती है तो अभिमन्यु उसे बचने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि पिछली बार भी जब हमने इप्सिता को ही अपना टारगेट बनाया था तभी वो शादी छोड़कर भाग गया था ताकि उसे कुछ ना हो, तो सोचो अब तो वो उसकी धर्मपत्नी बन गई है तो अपनी पत्नी को बचाने के लिए तो कुछ भी करेगा। नरेंद्र पल्लवी की बात सुनकर कुछ सोचने के बाद अपने दांत पीसते हुए बोला, और हाँ, जब उसे पता चल जाएगा कि हम ये सब कुछ फिर से उसके खिलाफ प्लान कर रहे हैं, उसे एक मिनट नहीं लगेगा हमें वापस जेल भिजवाने में, और पिछली बार भी जब हम जेल गए तो आपके हाथ में तो इतना भी पावर नहीं था कि आप हमें जेल से बेल दिला पाएं, इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करिए, हम ही कुछ सोचते हैं। पल्लवी ने उसकी ये बात सुनी और वो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई और उसने दोबारा नरेंद्र से कुछ नहीं कहा। तभी नरेंद्र के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और उसने कहा, हमें ऐसा लग रहा है इस बार हमें इप्सिता को नहीं बल्कि भाभी सा या फिर अर्पिता को अपना निशाना बनाना चाहिए। इतना बोलकर वो कुछ सोचने लगा। तभी पल्लवी ने कहा, क्या करने वाले हो आप? नरेंद्र ने पल्लवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस शैतानियत से मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में सब लोग खाना खाने के बाद बैठे थे। तभी इप्सिता की मम्मी ने खीर अभिमन्यु के सामने लाकर रखी। अभिमन्यु ने इप्सिता की मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी जी, इतना सब कुछ खिला दिया आपने, अब तो पेट में जरा सी भी जगह नहीं बची है। नंदिनी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी इप्सिता की मम्मी ने कहा, अरे जमाइसा, कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी हमने आपकी खातिर करना शुरू ही नहीं किया। अभिमन्यु ने जैसे ही उनकी बात सुनी तो उसने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, इससे ज्यादा आप लोगों को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप सब हमें जमाइसा की तरह ट्रीट मत करिए, हम तो सिर्फ यहाँ पर इप्सिता के हस्बैंड की तरह रहना चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमें वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप उदय को करते हैं। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्सिता के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपका बड़प्पन है जमाइसा, लेकिन आप तो हमारे जमाई हैं और हम चाहकर भी ये बात भूल नहीं सकते, इसलिए आप हमें हमारी खातिर करने दें, और वैसे भी आपका हक है और हमारा सौभाग्य। इप्सिता अपने पापा और मम्मी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। अभिमन्यु भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, और सबने एक साथ मीठा खाया। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर और इधर उधर की बातें करने के बाद अभिमन्यु उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब हमको इजाजत दीजिए, हमें अब चलना चाहिए। ये बात सुनकर नंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या जीजू, अभी थोड़ी देर पहले तो आए थे, इतनी जल्दी हम आपको नहीं जाने देंगे, कम से कम रात का डिनर तो करके जाइए। नंदिनी की ये बात सुनकर इप्सिता की मम्मी ने कहा, अरे नहीं बेटा, आप यहाँ पगफेरे की रस्म करने आए हैं तो इतनी जल्दी हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको आज की रात यहीं रुकना होगा। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी तो हैरानी से इप्सिता की तरफ को देखने लगा। तभी इप्सिता की मम्मी ने उन दोनों के पास आकर कहा, बेटा, आप पहली बार इस घर का जमाई यहाँ आए हैं, और वो बिना यहाँ रात गुजारे चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको आज की रात तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। अभिमन्यु हैरानी से इप्सिता की तरफ देख रहा था और उसने कहा, लेकिन हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं।
अभिमन्यु ये बोल ही रहा था कि तभी नंदिनी इप्सिता के बगल में आकर खड़ी होते हुए बोली, हाँ जीजू, मम्मी जी सही कह रही हैं, आप प्लीज आज यहाँ रुक जाइए ताकि मैं इशू के साथ थोड़ा सा और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लूँ, वैसे भी अभी तो मैंने उसे ठीक से बात भी नहीं की। इप्सिता नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अभिमन्यु की तरफ इशारे से रुकने के लिए कहा। अभिमन्यु ने जब देखा कि इप्सिता का भी वहां रुकने का मन है तो उसने उनकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, अगर आप सब हमें इतना रोक रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही तो नंदिनी ने खुश होते हुए इप्सिता को कसकर अपने गले लगाते हुए कहा, अब हम थोड़ा टाइम अपनी बेस्टी के साथ बिता पाएंगे। उसे इतना खुश होते देखकर उदय भी मुस्कुराने लगा और वो सब एक साथ इप्सिता के रूम में चले गए। वहीं बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। नंदिनी ने इप्सिता को छेड़ते हुए कहा, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी इशू पहले ही इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, और जब से वो रानी सा बन गई है तब से तो उसके चेहरे का ब्लश और भी ज्यादा बढ़ गया है। उदय नंदिनी की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा।